आज है 23 जुलाई दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। अपने मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को लेकर घिरी सरकार संसद के बाहर कर रही है पलटवार। मध्य प्रदेश में व्यक्तियों के खिलाफ याचिका दायर करना होगा मुश्किल।
एक प्रकार से ये एक्सेस टू जस्टिस को रोका जा रहा है, ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है और एक प्रकार से अघोषित इमरजेंसी है ऑन विसल ब्लोअर।
तीसरे दिन भी रही संसद की कार्यवाही बाधित। राहुल गांधी ने बोला सरकार पर हमला।
हमने प्रधानमंत्री जी से कहा ललित मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। व्यापम के बारे में क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। सुषमा स्वराज जी के बारे में क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। हमने यहाँ कहा है नो डिस्कशन विदाउट रेजिग्नेशन।
लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। दो दिन से संसद में विपक्षी दल कांग्रेस का उग्र विरोध झेलने के बाद आज भाजपा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कल शाम को दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने एक सीडी जारी की जिसमें उनके मुताबिक ये दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत के सचिव मोहम्मद शाहिद एक व्यवसायी से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उत्तर भारत में पंजाब रोडवेज की एक बस हिमाचल प्रदेश में एक खाई में गिर गई है। उस बस में 50 से ज़्यादा यात्री सवार थे। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि उनमें से सिर्फ 18 के बचने की पुष्टि हुई है। अब तक दुर्घटना स्थल से 5 शव निकाले जा चुके हैं। अन्य पीड़ितों को ढूंढने और बचाव का काम जारी है। दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को जमानत दे दी है। जितेंद्र तोमर को जून में दिल्ली की बार काउंसिल की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने कानून की जाली डिग्री जमा की थी। लाइबेरिया के एक संगठन ग्लोबल विटनेस ने दुनिया की सबसे बड़ी पाम ऑयल कंपनियों में से एक पर इल्ज़ाम लगाया है कि वह इबोला बीमारी के बहाने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रही है। ग्लोबल विटनेस संस्था का कहना है कि ग्लोबल वेरोलियम नाम की कंपनी ने हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन को पाम यानी ताड़ की खेती के लिए साफ कर दिया जबकि बीमारी अपने चरम पर थी। कंपनी इस आरोप से इनकार कर रही है लेकिन ग्लोबल विटनेस की प्रवक्ता लुईस राइली ने बीबीसी को बताया कि आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी का भूमि अधिग्रहण उन दिनों नाटकीय ढंग से बढ़ा।
They signed as many agreements during the Ebola outbreak as they had done in the 2.5 years previously.
इबोला बीमारी फैलने पर उन्होंने जितना संभव हुआ जमीन अधिग्रहण के समझौतों पर दस्तखत किए। इस दौरान करीब 14,000 हेक्टेयर जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया जो कि पिछले साल से करीब 2 गुना है। ये बेशक चिंता का विषय है। ये थे लुईस राइली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अलगाववादी नेता ने कहा है कि अलगाववादी लड़ाकुओं को सरकार के क्षमादान और नकदी मदद के वादे के बावजूद वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के नेता अल्ला नज़र ने बीबीसी उर्दू को बताया कि आज़ादी इस इलाके का ऐतिहासिक अधिकार है। हाल ही में यहाँ कई अलगाववादियों ने हथियार छोड़कर क्षमादान को स्वीकार कर लिया है। मिस्र की नील नदी में एक मालवाहक जहाज और यात्रियों की नाव के टकरा जाने से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। एक युवा जोड़े के परिवार और मित्रों ने उनके सगाई समारोह के लिए एक नाव किराए पर ली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वे काहिरा के उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे जब ये दुर्घटना हुई। फिलहाल अनेक यात्री लापता हैं। दुर्घटना स्थल से 5 लोगों को बचा लिया गया है और मालवाहक जहाज के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ये देखा जा रहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष संसद में एक दूसरे को घेरने में लगे हैं वहीं राज्य में भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई है। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत एक सीडी के जरिए निशाने पर थे तो आज सेमो के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हैं। देहरादून से लेकर दिल्ली तक मानसूनी माहौल के बीच सियासी तपिश के बारे में बता रहे हैं शिव जोशी।
एक दूसरे के दामन को दागदार बताने और अपना दामन साफ ठहराने के लिए लगता है इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस में जोर आजमाइश चल रही है। संसद में गतिरोध और कांग्रेस के तेवरों से परेशान बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार का मामला उठा दिया। दिल्ली में बुधवार को बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक सचिव के कथित स्टिंग की सीडी जारी की थी और सीधे हरीश रावत पर शराब माफिया से साठ गांठ का आरोप लगाया था। आज केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर सेब की ढुलाई में घोटाले के आरोप लगा दिए। रविशंकर के मुताबिक सेब की ढुलाई में वीरभद्र सिंह ने अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया। बात वीरभद्र की थी लेकिन रविशंकर ने निशाने पर रखा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को।
श्रीमान राहुल गांधी जी, सुषमा जी पर, वसुंधरा जी पर, शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाने वाले इसका जवाब दें। जो सीधा क्विड प्रो को घूसखोरी का मामला बनता है, क्या आपके मुख्यमंत्री को आप पहले इस्तीफा देने को कहेंगे?
बीजेपी के पलटवार की रंगतें देहरादून में भी देखने को मिली, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सचिवालय का घेराव किया और सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के पुतले फूंके। लेकिन इन हमलों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि सीडी की फॉरेंसिक जांच कराए बिना कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जो कहा गया है इस समय और जिस आधार पर कहा जा रहा है, जिसको एक दीनदयाल उपाध्याय सत्य माना जा रहा है, उस वीडियो को जब तक उसकी जांच नहीं कर लेते हैं, उसकी जांच के बाद फिर क्या मुझको अगला कदम उठाना है, मैं आपके पास आऊंगा।
लेकिन राज्य बीजेपी के तेवर भी तीखे हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने जोरदार शब्दों में मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा।
इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया है तो आप बच नहीं सकते, सरकार इसमें बच नहीं सकती। इस्तीफा नहीं देंगे तो पब्लिक, जनता सड़कों पर उतर कर इस्तीफा लेगी।
हरीश रावत फरवरी 2014 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे और पद संभालने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने राज्य की आबकारी नीति बदलते हुए निजी ठेकेदारों से शराब का ठेका पब्लिक अंडरटेकिंग को दे दिया था। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि खुद बीजेपी के शराब माफिया से रिश्ते हैं और उनके हितों को पूरा करने के लिए ही ये दबाव बनाया जा रहा है।
भाजपा बहुत इस समय परेशान है और क्योंकि उनके मुख्यमंत्री, उनके नेतागण अलग अलग प्रकार के आरोपों में घिरे पड़े हैं, भाजपा के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। उनके नेताओं ने कह दिया है कि हमारा सर शर्म से झुका जा रहा है।
इस बीच बीबीसी को सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री हरीश रावत कथित स्टिंग में देखे बताए गए आईएएस अधिकारी को अपने सचिव के पद से मुक्त कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनका निलंबन फिलहाल नहीं होगा और उनके पास अन्य विभाग बने रहेंगे। आपको बताते चलें कि उक्त अफसर के पास आबकारी के अलावा सूचना, भ्रष्टाचार उन्मूलन, स्वराज और जनसेवा जैसे विभाग भी हैं। तो अब हरीश रावत के अगले कदम और बीजेपी के आंदोलन का दम देखना होगा। क्या वो अपने ऊपर लगे मित्र विपक्ष के ठप्पे से खुद को निजात दिला सकेगी या नहीं? शिव जोशी, बीबीसी, देहरादून।
उधर व्यापम घोटाले को लेकर चौतरफा हमलों का सामना कर रही मध्यप्रदेश सरकार अब एक विधेयक को लेकर विवादों में घिर गई है। राज्य सरकार ने एक ऐसा विधेयक पास किया है जिसके तहत अब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में याचिका लगाना आसान नहीं होगा। दरअसल विधानसभा ने तंग करने वाला मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 को मंजूरी दी है और जिसके तहत एडवोकेट जनरल की राय के बाद ही याचिका को मुकदमे के दायरे में लाया जा सकेगा। एक रिपोर्ट के साथ भोपाल से शुरे न्याजी।
तंग करने वाला मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015, ये नाम है उस विधेयक का जिसके जरिए मध्य प्रदेश सरकार आरटीआई कार्यकर्ताओं और उन लोगों पर नकेल कसना चाहती है जो मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में बार बार याचिका लगाते हैं। वकील और आरटीआई कार्यकर्ता सिद्धार्थ गुप्ता इसे सरकार की मनमानी मान रहे हैं।
ये विधेयक एक आम जनता की आवाज को रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लाया गया है, जिससे कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोले नहीं, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज न उठाए। और मैं ये मानता हूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के विपरीत भी है, क्योंकि इस लोकतंत्र में आम आदमी को बोलने का अधिकार है, उसको अपनी पीड़ा कहने का अधिकार है। सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो दमनकारी नीति बनाई जा रही है, जो पुलिस शोषण कर रही है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उस पर अगर आदमी नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा।
इस नए कानून के तहत अगर कोई मंत्री या अधिकारियों को तंग करने या परेशान करने के मकसद से कोर्ट जाता है तो उसमें एडवोकेट जनरल की राय के बाद ही हाई कोर्ट की अनुमति से उसे कोर्ट में दायर किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के आम लोग भी इस कानून से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वो मानते हैं कि ये सब कुछ भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किया जा रहा है।
मुझे लगता है कि ये एक प्रयास है आम लोगों की आवाज को दबाने का। कोई व्यक्ति तभी बार बार कोर्ट जाता है जब सरकार में सुनवाई नहीं होती।
आखिर क्या है ये विधेयक? तंग करने वाला मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015 के मुताबिक कोई व्यक्ति लगातार अलग अलग मामलों को लेकर कोर्ट जाता है और वो सरकार, मंत्री, विधायकों या अधिकारियों की परेशानी का सबब बनता है, तो ऐसी याचिकाओं पर एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट को राय देंगे कि उस पर सुनवाई न की जाए, क्योंकि उसका मकसद परेशान करने का है। आम धारणा यह है कि व्यापम मामले में सरकार के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं को देखते हुए सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं। व्यापम पर मध्य प्रदेश विधानसभा में हो रहे शोरगुल के बीच इस विधेयक को बुधवार को बगैर किसी चर्चा के पारित कर दिया गया।
तो मध्य प्रदेश सरकार ने पास किया तंग करने वाला मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015। ये थे शूरे न्याजी। मैंने वरिष्ठ वकील विवेक तनखा से पूछा कि इस प्रस्तावित कानून में जो प्रावधान हैं उससे क्या मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं होता है, तो उनका कहना था,
हम लोग को पता चला कि बिना डिस्कशन के ये विधेयक पास कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ तो कोई प्रोसीडिंग सोरेली स्पीकिंग हुई नहीं थी। कल तो व्यापम को लेकर वहाँ शोर मच रहा था, उसी शोर में इस विधेयक को पास कर दिया गया। तो ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जो व्यापम को लेके इतनी सारी पिटिशन हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लगी, जिसके माध्यम से बड़े बड़े खुलासे हुए, जिसके माध्यम से आज सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस सबको रोकने का ये एक प्रयास है कि जो विसिल ब्लोअर्स हैं या दूसरे लोग हैं उनको जो आज कोर्ट में जाके जो अपनी बात बताते हैं उनको रोका जाए। तो एक प्रकार से ये एक्सेस टू जस्टिस को रोका जा रहा है, ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है और एक प्रकार से अघोषित एमरजेंसी है ऑन विसिल ब्लोअर्स।
सरकार 2005 में जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार लेकर आई थी और उसका मकसद यही था कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के किसी कामकाज के बारे में जानना चाहता है, फैसलों के बारे में जानना चाहता है, तो वो याचिका डाल सकता है और उसके बारे में जानकारी ले सकता है और एक तरह से ये सरकार के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया था ये कदम। तो अब ऐसे विधेयक जब राज्य सरकार पास करती है तो इन ऐसे कानूनों का, मतलब कि सूचना के अधिकार जैसे कानूनों का क्या मतलब रह जाता है फिर?
इनफैक्ट ये विधेयक में जो जितना ट्रांसपेरेंसी को लेके जो कानून बने हैं और जितना कंट्री ट्रांसपेरेंसी के लिए आगे बढ़ी है, ये एक बहुत बड़ा शॉक है, क्योंकि ये तो एक प्रकार से हम जो पूरा जो अभी तक ट्रांसपेरेंसी को लेके और कोर्ट को एक्सेस को लेके जो जजमेंट्स आए भगवती साहब के वक्त से 80s में, इस प्रकार से इसको इस पूरे को नलिफाई कर दिया इस एक विधेयक ने। और बड़ी बड़े चंबे की बात है कि ऐसी परिस्थिति में किया है जब सरकार खुद कटघरे में है और एक प्रकार से लोगों को कोर्ट जाने से रोकना चाहती है। अरे भाई, अगर कोर्ट में कोई जाता है, अगर पिटिशन बेकार है और उसमें एक एडवांस कॉपी तो स्टेट गवर्नमेंट को पहले से देनी ही पड़ती है, अनिवार्यता है, तो कोर्ट डिसमिस कर देगी, कॉस्ट लगा देगी। बट ये बोलो कि एक सरकार के नुमाइंदा जो कि एडवोकेट जनरल है उसको परमिशन लेके कोई कोर्ट जाए, ये तो वो परमिशन देगा क्यों? क्योंकि अगर उसको परमिशन देनी होती तो वो तो सरकार का नुमाइंदा नहीं होता। हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार का कानून है, क्या सिर पैर का कानून है, इससे क्या वो अचीव करना चाहते हैं। और संवैधानिक दृष्टि से तो ये कंप्लीटली गैर कानूनी है हमारे ओपिनियन में, और हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे।
हमने भी देखा कि व्यापम पर विधानसभा में हंगामा होता रहा, उस बीच ये कानून जो है, ये विधेयक पारित कर दिया गया। तो अब आप लोग इसके खिलाफ कुछ याचिका दायर करेंगे?
बिल्कुल,
इस कदम को
चलेंगे। मुझे पता है कि जब मध्य प्रदेश के वकील इस वक्त हाईकोर्ट में चुनौती देने की भी इसमें तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी करेंगे। ये इसको इस तरह छोड़ा नहीं जाएगा। और ये एक मुझे जो समझ आ रहा है, ये एक प्रकार से एक टेस्ट केस है। अगर उनको लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे विधेयक को लेके वो सफल हो जाते हैं, हो सकता है कि पूरे देश में ऐसा विधेयक लेके आ जाएंगे और एक प्रकार से सबका मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे किन परिस्थितियों में ये लॉ बनाया गया है और ऐसे लॉ से कितने बड़ी देश को हानि होगी। और देश हानि तो होगी। एक प्रकार से अभी तक जितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जिसने एक प्रकार से कानून को खोला है और कानून के दरवाजे खोले हैं, वो आज कानून के दरवाजे सब बंद कर दिए जा रहे हैं।
तो वरिष्ठ वकील विवेक तनखा का कहना है कि वे विधेयक को अदालत में चुनौती देंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी काफी आक्रामक दिखे। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने संसद की कार्रवाई को बाधित करने पर अपनी पार्टी का बचाव किया और कहा कि जब तक सरकार विवादों से घिरे अपने तीन नेताओं के इस्तीफे नहीं लेती, वो संसद में बहस नहीं होने देंगे। राहुल गांधी का कहना था,
हमने प्रधानमंत्री जी से कहा, ललित मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। व्यापम के बारे में क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। सुषमा स्वराज जी के बारे में क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो शांत है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के शब्दों में वजन हो। हम चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री कुछ कहें, जनता को लगे कि कुछ कहा है, कुछ शक्ति होनी चाहिए उन शब्दों में। हवा में बात करते हैं, जो भी आता है कह देते। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं आप, इस देश के जनता के प्रधानमंत्री हैं। जनता आपसे पूछ रही है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। हमने यहाँ कहा है, नो डिस्कशन विदाउट रेजिग्नेशन।
तो राहुल गांधी काफ़ी कड़े तेवर अपनाए हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान में किसानों से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और आज संसद की कार्यवाही और विपक्ष पर उनकी कड़ी टिप्पणी को किस तरह से देखा जाना चाहिए, यही सवाल मैंने पूछा वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से।
राहुल गांधी दो तीन महीने, दो ढाई महीने के लिए वो कहीं बाहर गए थे भारत से। जब लौट करके आए हैं तो उनके व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है और ये काफी एक बुनियादी बदलाव है, यानी उनके बोलने का तौर तरीका, भाषा, उनके जो विषय हैं वो बदल गए हैं। हालांकि उसके पहले भी वो कई बार, कई मौके आए जब उन्होंने आक्रामक होने की कोशिश की, जैसे कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक बार एक अध्यादेश को फाड़ के फेंक दिया। लेकिन तब की आक्रामकता और आज की आक्रामकता में बहुत बुनियादी फर्क है। तो मोटे तौर पर समझ में आता है कि ये व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी खुद और दूसरे पार्टी को, वो चूंकि एक बड़ी पराजय से निकल करके आए हैं, किसी तरीके से वापसी कराना चाहते हैं। और उस वापसी का एक तरीका ये भी है कि जो उनका मुख्य विपक्ष, जो विरोध है जिस पार्टी से, यानी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो कि नेता है उसके, उन दोनों के बारे में वो लगभग उसी तरीके से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को बैकफुट पर पहुंचा दिया था, लगभग वही तरीका वो अपनाना चाहते हैं।
तो कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश तो नहीं है कि वो एक परिपक्व राजनेता की छवि जो है राजनीतिक पार्टियों, अपने सहयोगियों, अपनी ही पार्टी और लोगों के बीच में स्थापित कर सके।
देखिए, एक तो ये है कि परिपक्व छवि बनाने के लिए एक थोड़ा सा समय लगता है। छवि अगर आप 2 साल पहले देखें, अप्रैल 2013 में जब राहुल गांधी ने CII का जो भाषण दिया था, जो सबसे पहला भाषण था, एक तरीके से उनकी शुरुआत थी इस वर्तमान राजनीति में पहलकदमी की, तो उसमें उन्होंने बड़े गंभीरता पूर्वक, पढ़े लिखे अंदाज में और बहुत दार्शनिक अंदाज में बहुत सारी बातें, बल्कि एक कवि के रूप में अपनी छवि बनाने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या कि उसके कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी ने भी व्यापारियों के बीच में गए और दिल्ली में श्रीराम स्कूल ऑफ कॉमर्स में गए या कुछ और जगह गए, उन्होंने आक्रामक तरीका अपनाया और इससे फर्क ये पड़ा कि आक्रामकता को एक प्रकार से रिकग्निशन मिली और राहुल गांधी की जो पद्धति थी वो पीछे रह गई। तो लगता यह है कि राहुल गांधी अब आप उस छवि को, जो उनकी एक पिछले 2 साल में थोड़ी सी पिछड़े या कहिए कि दबे हुए व्यक्ति की छवि थी, वो अब उसको बदल करके थोड़ी आक्रामक बनना चाहते हैं।
जी,
कितने सफल होंगे, क्या होंगे, ये तो आपको समय बाद ही पता लगेगा।
जी, और अगर संसद की कार्यवाही पर लौटें तो ये देखा जाता है कि अक्सर जब भी कार्यवाही शुरू होती है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक तरह से शुरू हो जाता है और दोनों ही पार्टियां, चाहे जो भी सत्ता पक्ष में हो वो विपक्ष पर और जो विपक्ष में हो वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना शुरू कर देती है। तो ये क्या जो मुख्य मुद्दे होते हैं उनसे लोगों का ध्यान भटाने की एक उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति के तहत वो करते हैं?
देखिए, भारत में राजनीति में शोर और आरोप प्रत्यारोप को अभी तक की जो परंपरा है राजनीति मानकर चला जा रहा है, कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में भी देश की जनता इन्हीं सारी चीजों को पसंद करेगी या नहीं करेगी। मैं केवल एक उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी दिल्ली में भारी विजय लेकर के आई, उसके 6 महीने पहले कोई नहीं कह सकता था कि वो पार्टी इतनी बड़ी विजय लेकर के आएगी। तो इसका कारण, और जो भी हो, मैं आम आदमी पार्टी के बारे में कोई अपनी फाइनल राय नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने जो दिल्ली के बस्तियों में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में जा करके जो काम किया, वो काम ज्यादा महत्वपूर्ण था और वोटर ने उस पर ध्यान दिया। लगता यह है कि हमारी पार्टियां परसेप्शन बनाने में, शोर मचाने में, एक दूसरे पर आरोप लगाने में जनता को या वोटर को भूले जा रहे हैं, उन्हें जा करके लोगों के बीच में काम करना चाहिए, शायद वही अंतिम और श्रेष्ठ राजनीति है।
तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी। और जैसा कि आपने समाचारों में सुना, हिमाचल प्रदेश में एक बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारे साथ फोन लाइन पर शिमला से जुड़ चुके हैं स्थानीय पत्रकार अश्विनी शर्मा। अश्विनी, ये बताइए कि कैसे हुई ये दुर्घटना और कितने लोग सवार थे इस बस में?
देखिए, ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है हिमाचल प्रदेश में आज शाम को लगभग 4 बजे के करीब। ये पंजाब, एक टूरिस्ट पंजाब से एक यात्री बस थी जो कि मणिकरण जा रही थी। मणिकरण सिखों का बहुत प्रसिद्ध स्थल है जिसमें हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। पंजाब के बरनाला शहर से ये बस निकली थी सुबह के वक्त, और गुरु कृपा नाम की संस्था जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसकी बस थी, और ये बुंतर से थोड़ा 8 किलोमीटर आगे जाके मणिकरण के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें अभी तक जो डिप्टी कमिश्नर कुल्लू है उनसे मेरी अभी बात हुई है, राकेश कमर, उन्होंने बताया कि लगभग 18 लोग जो जख्मी थे उनको बस पानी से निकाला गया है। पार्वती रिवर जो नदी है वहां दुर्घटनाग्रस्त हुई है, और 7 अभी तक शव मिले हैं, लेकिन अब अंधेरा हो चुका है और वहां पे बाकी जो मृतक हैं या लोग मिसिंग हैं उनकी सर्च करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उन्होंने राफ्टर वहां पे लगाए हैं उनको सर्च करने के लिए, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है, अंधेरे की वजह से शायद उसमें थोड़ा कल पड़ सकता है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। ये थे शिमला से अश्विनी शर्मा। और अब समय है आपकी चिट्ठियों का।
आपकी राय के साथ हाजिर हूँ मैं मोहनलाल शर्मा, और मेरे साथ मुस्कुराती हुई बैठी हैं सुमरन प्रीत कौर। तो चिट्ठियाँ पढ़ें।
बिल्कुल, शुरू हो जाते हैं। आशुतोष पांडे ने लिखी है चिट्ठी जिला बक्सर बिहार से। वो कहते हैं, उन्होंने खत लिखा है दूसरे श्रोताओं के बारे में, तो सुनिए। गोल पहाड़ी जमशेदपुर से भाई जंग बहादुर सिंह ने पिछले दिनों सही फरमाया कि हम श्रोता बहुत व्यक्तिनिष्ठ और स्वार्थी हो गए हैं, जो केवल प्रसारकों की प्रशंसा में पत्र लिखते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसका ये चिट्ठी हमने शामिल की थी जंग बहादुर साहब की, और चिट्ठी का मर्म ये था कि जितने भी हम लोग ब्रॉडकास्टर हैं, हम लोग अपनी तारीफें तो सुन लेते हैं, लेकिन जो स्टूडियो मैनेजर हैं, इस समय स्टूडियो मैनेजर कुणाल शर्मा बैठे हुए हैं, इस बात को सुनकर मुस्कुरा भी रहे हैं, उनके नाम नहीं आते, तो इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और उस पर हमने जवाब दिया था।
बिल्कुल, और उसके बाद इन्होंने कुछ कार्यक्रमों की तारीफ की है। इस रविवार और मंगलवार को प्रसारित फैलाऊ जियारा में सुनील खिलियानी के साथ मोहनलाल शर्मा की मनमोहक आवाज, जो जैन धर्म परंपरा के दृश्य चित्र खींच कर हमारे कानों में घोल रहे थे।
वाह, मैं बस यही कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। और इस श्रृंखला के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये एक कठिन काम है। सुनील खिलनानी की जो श्रृंखला है, ये मूल रूप से अंग्रेज़ी में है, और अंग्रेज़ी में उस श्रृंखला को सुनना, उसको तथ्यात्मक अनुवाद करना और उसके बाद उसी तरह से उसको पेश करना एक भारी जिम्मेदारी वाला काम है, और समय तो लगता ही है। और इसके बाद अगर वो आपको पसंद आ रही है, तो इससे हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो रही है।
अच्छा, एक और कार्यक्रम की तारीफ की है, वो है दुनिया जहां। कहते हैं कि अशोक कुमार जी ने बिना किसी लाग लपेट के दुनिया जहां एकदम जरूरी विषय पे प्रस्तुत किया और श्रोताओं के दिल में जगह बना ली।
मुझे मालूम है कि ये अशोक जी ने जो कीनिया पर दुनिया जहां कार्यक्रम पेश किया था, आपको ये पसंद आया। और आशुतोष कुमार पांडे जी, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने लंबा पत्र लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया, और उस लंबे पत्र में आपने कार्यक्रमों की तारीफ की है। मैं देख रहा हूं कि आपने राखी शर्मा के खेल कार्यक्रम की भी तारीफ की है। अगली बार जब आप ये पत्र लिखें, तो कुछ जो चीजें आपको नहीं पसंद आ रही हैं वो भी जरूर लिखें।
वैसे बहुत मिस कर रहे हैं रूपा झाजी की आवाज, और राजेश जोशी जी को भी मिस कर रहे हैं। दुनिया जहां की एक और तारीफ आई है रिजवान अंसारी दरभंगा से, जो कहते हैं कि दुनिया जहां में जनाब अशोक जी तो हमारे सुपरस्टार हैं ही, साथ ही निखिल रंजन जी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं।
क्या बात है, क्या बात है, आजकल दुनिया जहां के काफी प्रशंसक हो गए हैं।
अखलाक अहमद ने भी इसी कार्यक्रम की तारीफ की है, जिन्होंने लिखी है चिट्ठी अलाहाबाद से। उसके बाद मनीषा कुलश्रेष्ठ कहती हैं कि मैं एक हिंदी की चर्चित कथाकार हूं, मैं एक सचित्र यात्रा व्रत भेजना चाहती हूं उत्तरी सिक्किम के रोडोडेंड्रॉन फूलों की शिबंगी घाटी पर।
मनीषा जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अगर अपना लेख भेजना चाहती हैं, यात्रा वृतांत भेजना चाहती हैं, तो इसे bbchindi.letters पर भेज दें, और अगर हमें लगा कि हम इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर सकते हैं, तो निसंदेह इसका हम प्रकाशन करेंगे।
जी, और एक और खत आया है, लिखा है विनीत कुमार ने लखीमपुर से। वो कहते हैं बीबीसी हिंदी परिवार को सादर नमस्ते, में बहुत समय से वो शिकायत है उनकी कि बहुत समय से मेरा मेल शामिल नहीं किया गया है, कृपया आज शामिल कर लें।
तो शामिल हो गया विनीत भाई।
दुनिया जहां में सोमाली चरमपंथी अल शबाब के बारे में सुनकर मन स्तब्ध रह गया, इस बेहतरीन रिपोर्ट के लिए अशोक कुमार जी को धन्यवाद।
आज ये लगता है पूरा कार्यक्रम अशोक जी के नाम है।
मोहनलाल शर्मा द्वारा रंगभेद के विरोधी और अहिंसा के पुजारी नेल्सन मंडेला पर की गई विवेचना बहुत अच्छी लगी। हम बहुत समय से बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज पर इंडिया बोल का लिंक नहीं हमें मिलता है।
भाई विनीत कुमार, ऐसा है कि जहां पर आप बीबीसी इंडिया बोल का लिंक देखा करते थे, वहां पर अब फैला उजियारा की कड़ियां होती हैं, इसलिए बीबीसी इंडिया बोल का लिंक आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और रही बात नेल्सन मंडेला की विवेचना की तारीफ की, तो मैं स्वीकार कर लेता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा।
इन्होंने आपके फैला उजियारा की भी तारीफ की है।
वाह, तब तो ये और अच्छी बात है। तो फिलहाल अब कार्यक्रम में इतना वक्त नहीं है कि हम और पत्र शामिल कर पाए। मोहनलाल शर्मा और
सुमिरनप्रीत कौर
को देविदा, नमस्कार।
और अब सुन लेते हैं राखी शर्मा से खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा।
टू हार्टेड
खेल की खबरों में सबसे पहले बात श्रीलंका दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टीम की। श्रीलंका दौरे पर आज 15 सदस्यों वाली भारतीय टीम के चयन से पहले ये तय था कि टीम में तीसरे स्पिनर को जगह मिलेगी। श्रीलंकाई पिचों पर स्पिनर्स के कामयाब रिकॉर्ड को देखते हुए तीसरे स्पिनर के तौर पर 32 साल के अमित मिश्रा को शामिल किया गया है। मिश्रा की 4 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। वो ऑफ स्पिनर आर अश्विन और हरभजन सिंह का साथ देंगे। कर्ण शर्मा की उंगली में लगी चोट ने अमित मिश्रा की वापसी का काम और भी आसान कर दिया। 2008 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद भी उन्हें बीते 7 सालों के दौरान महज 13 टेस्ट खेलने का ही मौका मिला। इन मैचों में अमित मिश्रा ने 3.91 के इकोनॉमी के साथ 43 विकेट चटकाए हैं। अमित की वापसी पर पूर्व क्रिकेटर विजय दहिया बात कर रहे हैं।
आई थिंक जहाँ तक भारतीय टीम की बात करें, विकल्प खोजने की कोशिश यहाँ पर की गई है, क्योंकि मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ जहाँ पर चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी ने ये कहा था कि हम युवा खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, क्योंकि अमित मिश्रा की जहाँ बात करें युवा तो है नहीं, लेकिन ये देखना होगा कि वो अपने इस मिले हुए मौके का फायदा कैसे उठाते हैं, क्योंकि अगर इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मौका मिलने वाला है। और जहाँ मैंने विकल्प का जिक्र किया, भारतीय टीम 2 ऑफ स्पिनर के साथ जा रही है और जो तीसरा खिलाड़ी वो चाहते थे स्पिनर के रूप में, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को ना चाह के उन्होंने एक लेग स्पिनर का चयन किया, और इस समय जितने लेग स्पिनर हैं उनमें ये मानना था कि अमित मिश्रा सबसे बड़ी ऑप्शन है।
अमित मिश्रा के अलावा बांग्लादेश में इस महीने की शुरुआत में एक टेस्ट खेलने वाली भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बांग्लादेश दौरे को छोड़कर पिछले 1 साल में भारतीय टीम ने विदेशी दौरों पर हार का मुंह ही देखा है। श्रीलंका के किए 6 दौरों पर तो भारतीय टीम सिर्फ एक बार ही 1993 में ही सीरीज जीत पाई है। ऐसे में भारतीय टीम को मिलने वाली इस चुनौती पर विजय दहिया कहते हैं,
देखिए भारतीय टीम जब भी खेलने उतरेगी, बराबर की टीम के साथ खेलने उतरेगी, तो हमेशा ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ अगर आप श्रीलंका की बात करेंगे तो वो भी एक रीबिल्डिंग फेस में, महिला छोड़ चुके हैं, संगाकारा 2 टेस्ट मैचेस के बाद टेस्ट क्रिकेट छोड़ देंगे, एंजेलो मैथ्यूज के ऊपर अच्छा खासा दबाव है, पाकिस्तान ने अभी उनको पटकनी दी है उन्हीं के घर में, तो ये इन सब चीजों का दबाव होगा। रंगना हैरत खेल नहीं रहे थे स्पिनर के रूप में, तो इन सारी चीजों को उनको भी देखना पड़ेगा, तो उनके पास उनकी भी एक नई बनती हुई टीम है। कई बार क्या होता है कि ये खेल रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसमें आखिरी में देखा जाता है कि कौन हारा कौन जीता, लेकिन फिर भी भारतीय टीम एक इस तरीके की क्रिकेट खेलना पसंद करेगी कि जिसके साथ उसकी एक शैली जोड़ी साथ जा सके कि हाँ भारतीय टीम अब यहाँ से इस तरीके की क्रिकेट खेलना शुरू करेगी।
और वहीं चेन्नई में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक मैच में भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। ये मैच 28 से 31 जुलाई तक होगा।
खेल समाचार सुना रही थी राखी शर्मा। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। 2 दिन से संसद में विपक्षी दल कांग्रेस का उग्र विरोध झेलने के बाद आज भाजपा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लाइबेरिया के एक संगठन ग्लोबल विटनेस ने दुनिया की सबसे बड़ी पाम ऑयल कंपनियों में से एक ग्लोबल वेरोलियम पर इल्ज़ाम लगाया है कि वह इबोला बीमारी के बहाने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रही है। उत्तर भारत में पंजाब रोडवेज की एक बस हिमाचल प्रदेश में एक खाई में गिर गई है। इस बस में 50 से ज़्यादा यात्री सवार थे, उनमें से सिर्फ 18 के बचने की पुष्टि हुई है। दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को जमानत दे दी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अलगाववादी नेता ने कहा है कि अलगाववादी लड़ाकुओं को सरकार के क्षमादान और नकदी मदद के वादे के बावजूद वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ दिन भर के इस अंक में आज बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक कुणाल शर्मा के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।